यह तो कहा जा चुका है कि ईर्ष्या दूसरे की असंपन्नता की इच्छा की आपूर्ति से उत्पन्न होती है। पृष्ठ संख्या 82। ऐसी इच्छा यदि किसी हानि के बदले में अथवा हानि की आशंका से हो तो वह शुद्ध ईर्ष्या नहीं है। किसी दूसरे से हानि उठाकर उसकी हानि की आकांक्षा करना केवल बुराई का बुराई से जवाब देना है और क्रोध या बैर के अंतर्गत है। इसी प्रकार यदि किसी की संपन्नता में हमें क्लेश या हानि की आशंका है और हम उसकी ऐसी संपन्नता की अनिच्छा या उसका दुख करते हैं तो केवल अपना बचाव करते हैं। आजकल के शब्दों में अपनी रक्षा के स्वत्व का उपयोग करते हैं। यदि हम किसी अन्यायी को कोई अधिकार पाते देख कूटते हैं तो केवल अपने या समाज के बचाव का फिक्र करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। यदि हमें निश्चय है कि हमारा कोई मित्र इतना घमंडी है कि यदि उसे किसी वस्तु की प्राप्ति होगी तो वह हमसे ऐंठ दिखाकर हमारा अपमान करेगा, तो हमारा यह चाहना कि वह मित्र वह वस्तु न पाए अथवा इस बात पर दुखी होना कि वह करेगा तो हमारा यह चाहना कि वह मित्र वह वस्तु न पाए अथवा इस बात पर दुखी होना कि वह मित्र वह वस्तु पा गया, ईर्ष्या नहीं बचाव की चिंता है। इसी से अभिमानियों से ईर्ष्या करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। लोग इस अधिकार का उपयोग भी खूब करते हैं, क्या राजनीति में, क्या साहित्य में, क्या व्यवहार में, क्या मानव जीवन के सब विभागों में इस अधिकार का उपयोग होते देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि अच्छे लेखक के गुणों पर उसके अभिमान से आहत लोगों के प्रयत्न या उदासीनता से बहुत दिनों तक पर्दा पड़ा रहता है और वे जिंदगी भर भवभूति के इस वाक्य पर संतोष किए बैठे रहते हैं, उत्पत्स्यते हि मम को अपि समान धर्मा कलोह्यम निरवर्धि विपुल च पृथ्वी। अभिमान ग्रस्त गुण को लोग देखकर भी नहीं देखते। अभिमानी स्वयं अंधा होकर दूसरों की आंखें भी फोड़ता है। न उसे दूसरे से उत्कृष्ट गुण की ओर ताकने का साहस होता है और न दूसरों को उसके गुण को स्वीकार करने की उत्कंठा होती है। अभिमान दोनों ओर ज्ञान का निरोध अर्थात निषेध करता है। अतः जिस प्रकार अभिमान न करना श्रेष्ठ गुण है, उसी प्रकार दूसरे के अभिमान को देख क्षुब्ध न होना भी श्रेष्ठ गुण है। अब यह स्पष्ट हो गया कि ईर्ष्या दूसरे की प्राप्ति की संभावना से उत्पन्न है, चाहे वह वस्तु में प्राप्त हो या न हो। अतः ईर्ष्या धारण करने वालों के दो रूप होते हैं, एक असंपन्न तथा दूसरा संपन्न। असंपन्न रूप वह है जिसमें ईर्ष्या करने वाला दूसरों के ऐसी वस्तु प्राप्त करते देख दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे दुख में आलस्य या असामर्थ्य से उत्पन्न नैराश्य दूसरे की प्राप्ति से अपनी सापेक्षिक छोटाई का बोध, दूसरे की असंपन्नता की इच्छा और अंत में इस इच्छा की पूर्ति में बाधक उस दूसरे व्यक्ति पर एक प्रकार का मीठा क्रोध, इतने भावों का मेल रहता है। किसी वस्तु को हम नहीं प्राप्त कर सकते, दूसरा उसी को प्राप्त कर सकता है। हम समझते हैं कि लोक की दृष्टि में जब हमारी स्थिति पर पड़ी होगी तब उसकी स्थिति पर भी पड़ती होगी। इससे लोगों की दृष्टि में हमारी स्थिति अवश्य कुछ न्यून जचती होगी। अतः स्थिति की समानता के लिए हम चाहते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को न प्राप्त करता या खो देता। वह दूसरा व्यक्ति जीता जागता यत्नवान प्राणी होने के कारण उसे प्राप्त करना या रक्षित रखता है। पृष्ठ संख्या 83। इससे हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा होती है और हम बाधक के ऊपर मन ही मन चिड़चिड़ाते हैं। ईर्ष्या में क्रोध का भाव किस प्रकार मिला रहता है, इसका प्रमाण बराबर मिलता रहता है। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु से संपन्न देख यदि कोई उससे ईर्ष्या करता है तो केवल यही नहीं होता कि वह उसी वस्तु को उससे अलग करके या अलग करने का प्रयत्न करने से संतोष कर ले, बल्कि वह उस संपन्न व्यक्ति को अवसर पाने पर बिना किसी अन्याय कारण के कुवा के भी कह बैठता है। जो दुखाने का यह प्रयत्न बिना किसी प्रकार के क्रोध के नहीं हो सकता। इसी कारण जैसे क्रोध से जलना कहा जाता है, वैसे ही ईर्ष्या से जलना भी कहा जाता है। साहित्य के शब्दों में ईर्ष्या के संचारी के रूप में समय समय पर व्यक्त होता हुआ देखा जाता है। अब यहाँ पर लगे हाथों यह भी देख लेना चाहिए कि यह क्रोध किस प्रकार का है। यह क्रोध बिल्कुल जड़ क्रोध है। जिसके प्रति ऐसा क्रोध किया जाता है उसके मानसिक उद्देश्य की ओर नहीं ध्यान दिया जाता। यदि हम असावधानी से दौड़ते समय किसी सोए आदमी से टकरा कर उस पर बिगड़ने लगे या रास्ते में पत्थर की ठोकर खाकर उसे चूर चूर करने पर उतारू हो तो हमारा यह क्रोध जड़ क्रोध होगा, क्योंकि हमने यह विचार नहीं किया कि क्या वह आदमी हमें ठोकर खिलाने के लिए ही सोया था या वह पत्थर हमारे पैर में लगने के ही नामाकुल इरादे से वहां आ पड़ा था। यदि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है और दूसरा उसे प्राप्त करता है तो वह उस उद्देश्य से नहीं प्राप्त करता कि उससे हम अपनी हेठी समझकर दुखी हों और हमारी इच्छा में बाधा पड़े। यह दूसरी बात है कि पीछे से यह मालूम करके भी उसकी प्राप्ति से हम अपनी हेठी समझकर बेचैन हो रहे हैं। वह हमारे दुख में सहानुभूति न करे और उस वस्तु के लिए आनंद से कान में तेल डाले बैठा रहे। प्रायः तो ऐसा होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को पहले यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी प्राप्ति से किन किन महाशयों को मान हानि हो रही है। ऊपर कहा जा चुका है कि ईर्ष्या धारण करने वालों की दो दशाएं होती हैं, असंपन्न और संपन्न। असंपन्न दशा का दिग्दर्शन तो ऊपर हो चुका। संपन्न दशा वह है जिसमें जो वस्तु हमें प्राप्त है उसे दूसरे को भी प्राप्त करते देख हमें दुख होता है। असंपन्नता में दूसरे को अपने से बढ़कर होते देख दुख होता है। असंपन्नता दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से बढ़कर रहें, उसके बराबर न रहें। संपन्न की ईर्ष्या में आकांक्षा बढ़ी चढ़ी होती है, इससे उसका अनौचित्य भी बढ़कर होता है। असंपन्न ईर्ष्या वाला केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचने के लिए आकुल रहता है, पर संपन्न ईर्ष्या वाला दूसरे को नीचा समझते रहने के लिए व्याकुल रहता है। असंपन्न की ईर्ष्या में नैराश्य का भाव और अपनी कमी का दुख मिला रहता है, इससे उसकी कलुषता उतनी गहरी नहीं जान पड़ती। निराशा और अभाव पीड़ित मनुष्य जैसे इधर उधर भूलता भटकता फिरता है, वैसे ही ईर्ष्या की राह में भी जा पड़ता है। पर संपन्न ईर्ष्यालु की स्थिति ऐसी क्षोभकारिणी नहीं होती।